नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ वीर संघवी का लेख, जिसमें कह रहे हैं कि विदेशों में भारतीय खाना हमारी सॉफ्ट पावर है, लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल इसका बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण हो गया है। अलग तरह की पोशाक वाली एक समर्पित फ्लीट सर्विस के साथ प्योर वेज मोड शुरू करने के जोमेटो के फैसले पर हंगामा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुख की बात है कि ये सभी शुद्ध शाकाहारी चीज़ें मौजूदा वक्त के बारे में कुछ संकेत दे रही हैं। पिछले न्यू इंडिया दशक में देश भर में चुनी गई लगभग हर भाजपा सरकार ने जो पहला काम किया है वो है भोजन को लेकर बुरी तरह जुनून सवार होना। ये गोमांस से शुरू हुआ, अंडे तक गया और अंततः किसी भी तरह के मांस तक पहुंच गया। निसंदेह बीजेपी ऐतिहासिक रूप से गोमांस के प्रति विरोध का भाव रखती रही है। यहाँ तक कि जब संविधान सभा युवा राष्ट्र के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस कर रही थी, तब भी गोहत्या पर असहमति थी। आखिरकार मामला राज्यों पर छोड़ दिया गया, जिनमें से अधिकांश ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा और कई पूर्वोत्तर राज्य इसका अपवाद बने हुए हैं। लेकिन हालांकि गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन आमतौर पर यह प्रतिबंध गोमांस की बिक्री को नहीं रोक सका। रेस्तरां और होटलों ने इस आधार पर गोमांस का आयात किया कि इसमें भारतीय गायों का वध शामिल नहीं है। अधिकांश राज्य सरकारों ने भी एक विशाल गोमांस निर्यात उद्योग को विकसित होने की इजाज़त दे दी। हालांकि जब इसे चुनौती दी गई तो निर्यातकों ने कहा कि वे गायों का नहीं बल्कि भैंसों का वध कर रहे थे। ये एक स्वीकार्य समझौता था जिसके साथ भारत रह सकता था, लेकिन लगभग एक दशक पहले राज्य सरकारों ने मांस निर्यातकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। यह देखने के लिए रेस्तराओं पर छापे मारे कि क्या उनके फ्रिज में कोई गोमांस है, और गोमांस बेचते पाए जाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकारी सक्रियता में ये बढ़ोतरी धार्मिक असहिष्णुता के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ साथ कुछ सीधे सीधे गुंडागिरी के साथ भी हुई। तथाकथित गौरक्षकों ने गायों का व्यापार करने वाले मुसलमानों को पीटा, जबकि हाउसिंग सोसाइटियों ने प्रवेश के लिए खाद्य आधारित मानदंडों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में गोमांस विरोधी अभियान का विस्तार सभी मांसाहारी भोजन तक हो गया। यहाँ तक कि 20 साल पहले भी मुझे मुंबई में गुजराती बहुल हाउसिंग सोसाइटी के बारे में सुनना याद है, जो मांसाहारियों को फ्लैट खरीदने की इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन अब वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि यह चलन बढ़ गया है। बहुत से मकान मालिक और समाज मांसाहारियों से दूरी बनाकर रहते हैं। ये खुले तौर पर सांप्रदायिक या जातिवादी दिखाई दिए बिना मुसलमानों के साथ साथ निचली जातियों को बाहर रखने का एक तरीका है। मकान मालिकों को ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम मुसलमानों या दलितों को किराए पर मकान नहीं देते। इसके बजाय वे कहते हैं, हम केवल शाकाहारी किराएदारों को ही मकान किराए पर देते हैं। शाकाहार का महिमा मंडन करने और मांस खाने वालों को पथभ्रष्ट मानने की इस मनोदशा को देखते हुए लगभग सभी को साथ निभाना पड़ा है। भैंस का मांस परोसने वाले होटलों ने इसे अपने मेन्यू से हटा दिया, खासकर तब जब पुलिस ने दिल्ली के आंध्र भवन पर इस आधार पर छापा मारा कि वहां गोमांस परोसा जा सकता है। इस सबके साथ समस्या ये है कि हालांकि अधिकांश हिंदू धार्मिक कारणों से गोमांस नहीं खाते हैं, लेकिन इससे यह जरूरी नहीं कि वह शाकाहारी हों। एक के बाद एक सर्वेक्षण से पता चला है कि हालांकि कुछ जातियां बड़े पैमाने पर शाकाहारी हैं, लेकिन अन्य जाति समूहों में शाकाहार का पालन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई देती। इसके अलावा प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत हमेशा से मांस खाने वाले लोगों का देश रहा है, और फिर भी विचित्र रूप से हिंदू कट्टरपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के बीच खुद को शुद्ध शाकाहारी घोषित करना सम्मान का प्रतीक बन गया है। शाकाहारी समाज के रूप में भारत का चित्रण करना वास्तविकता की अनदेखी करने जैसा है। गुजरात में, जिसे आमतौर पर शाकाहारी राज्य का उदाहरण माना जाता है, वहां भी काफी लोग मांसाहारी हैं। वास्तव में गुजरात के मुस्लिम समुदायों का भोजन कई उत्तर भारतीय मांसाहारी व्यंजनों से बेहतर हो सकता है, और गुजरात में आदिवासी और निचली जातियां भी आवश्यक रूप से शाकाहारी नहीं हैं। तो इतने सारे हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथियों ने शाकाहार के मुद्दे पर धार्मिक और तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण रुख अपनाने का फैसला क्यों किया? इसका एक उत्तर ये है कि इसका संबंध शुद्धता की अवधारणा से है, जैसा कि शुद्ध शाकाहारी वाक्यांश में प्रयोग किया गया है। एक अन्य व्याख्या ये है कि शाकाहार पर जोर देने से हिंदू कट्टरपंथियों को मुसलमानों को अलग करने और निशाना बनाने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा आप धार्मिक शाकाहार का उपयोग हिंदू त्योहारों के दौरान मांस की दुकानों और भूचड़खानों को कुछ दिनों के लिए बंद करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सीधे तौर पर कई मुसलमानों की आय और आजीविका के स्रोत को प्रभावित करता है। जिस तरह शाकाहार के पक्ष में आधिकारिक और अर्ध आधिकारिक अभियानों में सांप्रदायिकता निहितार्थ हो सकता है, उसी तरह शुद्ध शाकाहारी प्रवृत्ति के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब लगभग पूरी तरह से जाति के आधार पर तैयार किया गया है। जब सुधा मूर्ति ने पिछले साल एक फूड शो में कहा था कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं, तो सबसे आम आलोचना यह थी कि शुद्ध शब्द का उपयोग उनकी ब्राह्मण पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुआ था। इस तरह की आलोचना जोमैटो द्वारा शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए एक विशेष डिलीवरी सेवा की घोषणा के बाद हुई है, जहां वर्दी अलग होती है। आलोचकों ने कहा कि हमें शाकाहार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुद्ध शब्द का उपयोग क्यों करें? भोजन की प्राथमिकता के बारे में कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, जब तक कि आप जाति भेद को न माने। जब सुधा मूर्ति का विवाद छिड़ा तो मैंने उसके बचाव में लिखा कि मुझे इस बात पर संदेह है कि क्या उन्होंने वास्तव में ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए शुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया होगा। शुद्ध शाकाहारी शब्द अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अंडे भी नहीं खाता। मुझे नहीं लगता कि शुद्ध का मतलब शुद्ध उच्च जाति के ब्राह्मणों के लिए भोजन है, जैसा कि उनके आलोचक कह रहे थे। निश्चित रूप से आप पूरे भारत के रेस्टोरेंट में प्योर वेज लिखा हुआ देखते हैं, जहां इसका मतलब केवल पूरी तरह से शाकाहारी होना होता है। जोमैटो का विवाद दिखाता है कि भोजन का इन दिनों किस तरीके से राजनीतिकरण हो गया है। मैं एक गुजराती जैन परिवार में पैदा हुआ था, और हालांकि मेरे माता पिता शाकाहारी नहीं थे, मेरे कई शाकाहारी रिश्तेदार थे जो अंडे भी नहीं खाते थे, और फिर भी उन्होंने मेरे या मेरे माता पिता को कमतर नहीं माना क्योंकि हम मांस खाते थे। उन्होंने माना कि हमें जो पसंद है उसे हमें खाने का अधिकार है, और वे कभी भी हमारी भोजन प्राथमिकताओं को लेकर आलोचना करने की कोशिश नहीं करते थे। इसे ऐसा ही होना चाहिए। डिनर ऑर्डर करने में कोई मॉरल जजमेंट शामिल नहीं है, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद और नापसंद का मामला है। बेशक लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं और वे इसके हकदार भी हैं, लेकिन जैसे ही वे नैतिक श्रेष्ठता का दावा करना शुरू करते हैं और अपनी प्राथमिकताएं दूसरों पर थोपना शुरू करते हैं, वे हमें एक अधिनायकवादी राज्य की ओर एक कदम और करीब ले जाते हैं, जहां न केवल बोलने की आज़ादी का अधिकार बल्कि लंच और डिनर की स्वतंत्रता का अधिकार भी नागरिकों से छीन लिया जाता है। मुझे खुशी है कि जोमैटो ने अपने शुद्ध शाकाहारी डिलीवरी वाले लोगों के लिए एक अलग यूनिफॉर्म का विचार छोड़ दिया है। आइए भोजन को वहीं रखें जहां वो होना चाहिए, यानी हमारी प्लेट में और हमारे पैलेट में। यह एक निजी मामला है जो सरकारी हस्तक्षेप और नैतिक निर्णय से मुक्त होना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे दिप्रंत सुप्रभात के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।